ओम शांति। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी मोहिनी पंजाबी दीदी जी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। दीदी जी 60 सालों से ईश्वरीय विश्वविद्यालय का संचालिका बन करके विदेश में बहुत अच्छी रीति से सेवा कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी राजयोगी शिक्षिका साकार मम्मा बाबा के पालना आपने लिया है। 1961 में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री इन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस और बाद में 1962 में डिप्लोमा इन जर्नलिज्म ए डिग्री पा करके बाद में बाबा के यज्ञ में समर्पित होकर के 60 सालों से सेवा कर रहे हैं। और ब्रह्मा कुमारीज, शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्रह्मा कुमारीज वर्ल्ड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ USA एंड रीजनल कोऑर्डिनेटर ऑफ ब्रह्मा कुमारीज वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी फॉर द अमेरिकास एंड द कैरिबियन एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी टू द यूनाइटेड नेशंस इन न्यूयॉर्क। An experienced spiritual educator with Brahma Kumari Ishwari Vishwavidyalaya for over 60 years, BK Mohini Didiji has been actively engaged in administrative matters for the university in a range of areas. She serves as the primary representative of the Brahma Kumaris at many world conferences and as an advisor to the international projects, non-governmental organizations and interfaith organization. She is also a frequent speaker on spiritual issues and an ambassador of the Brahma Kumaris to diplomats and the head of the state. Adaniya Rajogini Brahma Kumari Mohini Didi Ji, अनेक किताबों को भी पब्लिश किया है। 1993 में सर्वड ऑन द एडिटोरियल कमिटी ऑफ विजन्स ऑफ ए बेटर वर्ल्ड ए यूनाइटेड नेशंस पीस मैसेंजर पब्लिकेशन। सेकेंडली 95 में कंसल्टेंट लिविंग वैल्यूज ए गाइड बुक डेडिकेटेड टू द 50th एनिवर्सरी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। 2006 में Nurturing the Soul, a step-by-step method towards a natural link with the Supreme and directions to transform the mind. In 2008, Inspiration and Editorial Guide for the Story of Immortality, a Return to Self-Sovereignty. Adarniya Mohini Didi Ji, Sahitya ke dwara bhi बाबा का संदेश देश विदेश में फैलाने की विशेष सेवा में उपस्थित हैं। दादी जी, आदरणीय मोहिनी दीदी जी, श्रद्धा ज्ञान देती हैं, नम्रता मान देती हैं और योग्यता स्थान देती हैं। यह त्रिमूर्ति का संगम सिर्फ आप में है, दीदी जी सिर्फ आप में है। और हम आज इस सभा में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अपनी अंतर्दृष्टि और बुद्धिमत्ता से जीवनों को प्रभावित किया है। आपने इस उम्र में भी अथक समर्पणता से, उमंग उत्साह से हर फल आप सेवा में उपस्थित हैं, विश्व सेवादारी बन के सेवा कर रहे हैं। आदरणीय दीदी जी का और एक विशेषता है, आप ट्रांस में जाकर के बाप दादा का विशेष संदेश ले आकर के हम सबके सामने रखते हैं। आदरणीय दीदी जी को आज के विशेष है, फ्रांस का विशेष अनुभव है ना, इसलिए सूक्ष्म वतन के राज, सूक्ष्म वतन क्या है, कहाँ वहाँ क्या होते हैं, उसके राज के बारे में दादी जी हम सबके सम्मुख अपना अनुभव रखेंगे। आदरणीय मोहिनी दीदी जी को ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एडमिनिस्ट्रेटिव एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड को करतल ध्वनि से हम हार्दिक स्वागत है, सुस्वागत है, शिव स्वागत है, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। वास्तव में हम सभी का परिचय एक ही है, जो परिचय बाबा ने आके दिया है। बाबा ने हम सबको संगम युग पर भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाओं के निमित्त बनाया है। हम सभी को हरेक का जो पार्ट है ड्रामा में, वो निमित्त बन के हम बजा रहे हैं। कई तरह के बाबा विशेषताएं हम में भरते हैं, तो हम निमित्त बन के सेवा करते हैं। बाबा के पास आए मधुबन में 1958 में पहली बार आना हुआ। साकार बाबा दिल्ली में आए थे, तो अभी कॉलेज शुरू किया था, तो बाबा ने कहा बच्ची मधु बनाओ। तो कॉलेज भी पढ़ते थे, सेवा केंद्र पर भी जाते थे। तो एक बार हमारे पास जहाँ पर दिल्ली में रहते थे उस सेवा केंद्र पर दो बहनें आती थी, एक मोहिनी बहन जो मधुबन वाली मोहिनी बहन, और दूसरा रुक्मणी दादी जो रजौरी गार्डन में थी पहले। तो थर्स्टी का भोग लगता था, तो भोग में बैठे थे, कोई इतना ज्ञान नहीं था, थोड़ा बहुत ज्ञान लिया था। तो एक गुरुवार को भोग लग रहा था, तो काफी समय हो गया, मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा है। ऐसे जैसे ही शुरू से योग करना सीखा तो एक नशा चढ़ता था बहुत, दो तीन घंटे बैठे रहते थे सवेरे। और उस दिन जब आंखें खोली तो 11 बज चुके थे दोपहर के, कुछ पता ही नहीं
तू जैसे पहली बार साक्षात्कार हुआ, बहुत जैसे देवी देवताओं के स्वरूप, इस तरह से ऐसा लगा कि चारों तरफ बहुत सुंदर गोप गोपियां कहें या देवी स्वरूप कहें, तो चारों तरफ राज कर रहे थे। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, तो मैं भी उनके साथ राज करने लगी। आपको मालूम है राज क्या होता है? किसको मालूम है? बहुत थोड़े लोगों को। डांस क्या होता है वो तो सबको पता है नहीं, परंतु राज क्या होता है? अभी दो दिन पहले ऊपर ज्ञान सरोवर में डबल विदेशियों की क्लास कराने गई, तो उन्होंने टॉपिक रखा था एंजेलिक डांस, फरिश्ते की डांस। तो उन दिनों में एक बहुत अच्छा अनुभव होता था जिसको कहते थे अति इंद्रिय सुख। सुना है ना आप लोगों ने? किसने सुना है अति इंद्रिय सुख? किस किस ने अनुभव किया है? जो इंद्रियों से नहीं, खा के चल के कहीं जाके कुछ देख के नहीं, इंद्रियों रहित, और वो ऐसा गहरा सुख होता है कि अपने शरीर का भान नहीं रहता। और उन दिनों में तो एक नेचुरली अति इंद्रिय सुख में है तो हाथ चलते थे। कितना इंटरेस्टिंग था हमारे ब्रह्मा बाबा भी, जैसे उस अतीन्द्रिय सुख में। आप लोग करना चाहते हैं अतीन्द्रिय सुख? यस, करना चाहते हैं? अच्छा, तो अतीन्द्रिय सुख जब होता है तो शरीर का भान नहीं रहता है ना? और जैसा वातावरण होता है, एक बार हिस्ट्री हॉल में ब्रह्मा बाबा उन दिनों में चित्र बन रहे थे, जाड़ गोला त्रिमूर्ति, तो आर्टिस्ट आए हुए थे काफी, तो वो आर्टिस्ट बनाते थे। दादी गुलजार वतन में देख के आती थी कि फिर झाड़ ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, तो वो आके बताती थी आर्टिस्ट को ऐसा बनाओ ऐसा बनाओ। और ब्रह्मा बाबा फिर वो ऐसे हिस्ट्री हॉल में जमीन पर, उस समय वही हॉल था, तो जमीन पर ऐसे चित्र बिछे हुए होते थे, तो बाबा जाते थे दो तीन बार देखने के लिए कि एक्यूरेट बन रहा है, कलर कैसे हैं। तो एक बार मैं वहां से गुजर रही थी तो हमारे बाबा जैसे श्री कृष्ण और उनके जैसे साथ में, अकेले नहीं है, जैसे बहुत सारे गोप गोपी हैं, तो मैं सोचा अंदर जाके देखूं। तो बाबा मुस्कुराए, पर बाबा अतीन्द्रिय सुख में थे। तो उन दिनों में बहुत ज्यादा एक अतीन्द्रिय सुख का जो नशा है, देही अभिमानी स्थिति है, उसका बहुत अनुभव करते थे। उन दिनों में देवी देवता बनना है, ये बहुत ज्यादा अटेंशन थी। जैसे आजकल हम फरिश्ते की बात करते हैं, उन दिनों में देवी देवताएं तो कहने का भाव यह है कि यह भी एक सुख ऐसा सुख है जिसमें जो भी यहां के सुविधाएं हैं सुख हैं उनकी कोई अट्रैक्शन नहीं थी कोई भी। तो जब ऐसा होने लगा और फिर ज्ञान मिला तीन लोकों का चित्र सृष्टि चक्र फिर सूक्ष्म वतन फिर अपना घर तो मैं जब मधुबन में आई तो बाबा ने मुझे कहा बाबा को पता लगा कि ये थोड़ा नशे में जाती हैं और बाबा ने कहा बच्चे 4 बजे आना बाबा के कमरे में अभी मैं पांडव भवन में छुट्टी लेने के लिए 18 को हम जा रहे हैं तो 2 महीने रहे तो बाबा से छुट्टी लेने गए पांडव भवन तो एकदम वो दृश्य सामने आया तो बाबा ने मुझे जो बाबा का बेड था इस सामने दीवार का बच्ची बैठो बाबा के पास जाओ और देख के आओ कि उस बाबा में अव्यक्त बाबा में और मेरे में कितना फर्क है क्यों हम लोग तो छोटी आयु थी तुमने इस कई बातों की ध्यान में नहीं था तो गए ध्यान में गए जो देखा वहां पर वो आके बाबा को बताया तो बाबा उन दिनों में ये चेक करते थे कि कौन सी बच्ची कहां तक जाती है तो धीरे धीरे हमको 5 तत्वों से पार सूक्ष्म वतन तो ऐसी फीलिंग आती थी रियल फीलिंग कि जैसे ऊपर जा रहे हैं जैसे वो परी होती है ना कई बार तो भोग ले जाते थे तो अगर 10 लोग 10 संदेशी भोग ले जा रही हैं तो रास्ते में मिलते थे एक दूसरे को आप लोगों को अजीब लगता होगा सुन के सबके हाथ में ट्रे है वतन में जा रहे हैं वतन में जा रहे हैं अपने वतन शब्द सुना है और वो है सूक्ष्म वतन। तो क्या होता है कि एक अपनी स्थिति होती है एक बाबा की गिफ्ट होती है तो जैसे बैठते हैं तो 5 तत्वों से पार जैसे आत्मा ऊपर जा रही है। ब्रह्मलोक जो अपना घर है शांति धाम और 5 तत्व तो आकाश से ऊपर पता लगता है नहीं 5 तत्वों से ऊपर जा रहे हैं तो वहां पर एकदम सफेद लाइट भी नहीं कहेंगे पर एकदम जैसे सिल्वर की लाइट होती है ना जैसे चांदी होती है उसके ऊपर अगर प्रकाश हो तो वहां पर शुरू में तो देखो जब हम आए तो ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी बात चलती थी देखते थे वतन में तीनों को धीरे धीरे उनका भी पार्ट पूरा हो गया फिर बाबा अव्यक्त हुए तो बाबा को हम वहां पर देखते थे वतन में जो अभी भी देखते हैं। तो शुरू में तो बाबा ने बहुत तरह के साक्षात्कार कराए परंतु अगर संदेश बाबा देते हैं उन दिनों में बाबा ही देते थे बच्ची ये पूछो बाबा से ये पूछो तो हम आके बताते थे बाबा हमने ये बाबा ने बताया। अब देखो यहां पर है टॉक मतलब वाणी सूक्ष्म मूल वतन में है साइलेंस और बीच में जो सूक्ष्म वतन है वहां पर है, तो बाबा की जो भाषा है सूक्ष्म वतन में आवाज तो है नहीं, तो एक मूवमेंट बोलते हैं ना उसको, मूवमेंट मतलब कि ऐसे दिखाई पड़ रहा है जैसे बाबा बोल रहे हैं पर आवाज नहीं है। अब शुरू में तो वो भाषा समझ में नहीं आती थी, सिर्फ देखते थे ये हो रहा है ये हो रहा है, आके बता देते थे चाहे संदेश में चाहे। धीरे धीरे जो भी मूवमेंट होता था वो क्या है, बाबा क्या कह रहे हैं, समझ में आने लग गया। जैसे मिसाल देते थे उन दिनों में कि एक पुलिसमैन है, नहीं पुलिसमैन क्या बोलते हैं ना, चौरा क्रॉसिंग पे खड़े हैं, तो जब क्रॉसिंग पे खड़े हैं तो कहते हैं स्टॉप, राइट, डायरेक्शन देते इधर जाओ, वो बोलते तो नहीं है ना, तो कहते हैं गांव का आदमी था वो वहां खड़े होके वो भी वही करने लगा, तो पुलिसमैन ने कहा मैं आपको कह रहा हूं जाओ, तो वो कहता है मैं आपको कह रहा हूं जाओ, क्योंकि उस गांव वाले को पता नहीं था कि जब ऐसे कहते हैं तो क्या मतलब है ऐसे। तो बाबा ने संतरी दादी, आप लोग जानते हैं सुना है नाम संतरी दादी, जो बाबा के पर्सनल ट्रांस मैसेंजर थे, क्योंकि बाबा को तो घर से बाहर ट्रेवल करना है, तबीयत के कारण कभी बॉम्बे जाना है, तो बाबा के लिए डायरेक्शन आता था फिर बाबा जाते थे। और एक दूसरी संदेशी थी जिनका नाम ही संदेशी रखा था, वो हमेशा बाबा के साथ दोनों, क्योंकि बाबा को हर बात में डायरेक्शन लेनी है, तो बाबा कहता था बाबा से पूछ के आओ, बाबा बाबा ये करना चाहते हैं, परमिशन है, करे कि नहीं करे, हर कदम पर बाबा डायरेक्शन लेते थे। तो संतरी दादी को बाबा ने वहां बिठाया नीचे जहां पर बाबा बैठते थे ना, अभी भी बाबा के कमरे में आप जाते हैं तो एक बेड है ऊपर और एक नीचे मैट्रेस की तरह बिछा हुआ है, तो बाबा हमेशा वहीं बैठते थे, एक गोल तकिया भी था और ये बिछा होता था, बाबा वहां बैठते। तो संतरी दादी को वहां बिठाया, हमें बहुत बाद में पता चला ये देखने के लिए कि बच्ची कहां तक जाती है। तो सूक्ष्म वतन एक ऐसा स्पेस कहें, ऐसा स्पेस है जहां पर शिव बाबा परमधाम से हम लोग साकार वतन से जाके बात करते हैं, क्योंकि मूल वतन में तो बात कर नहीं सकते, और निराकार बाबा यहां नहीं आते, मतलब कहने का कि मुरली चलती है पर डायरेक्शन से ना। तो हम लोगों के लिए उस टाइम ऐसे था कम्युनिकेशन पॉइंट कि बाबा से पूछना है, बाबा को कहना है, बाबा को कोई डायरेक्शन देनी है, तो जैसे एक बीच में वो स्थान था सूक्ष्म मतन, हमारी मुलाकात का स्थान। तो हम लोग उस समय हंसी में कहते थे बाबा के बाबा ने अपना दफ्तर बनाया। और उन दिनों में क्योंकि साक्षात्कार में विष्णु दिखाई दिया, ब्रह्मा दिया, तो कम्युनिकेशन करने के लिए या जो लक्ष्य मिलता था विष्णु का, चारों अलंकार क्या है ये सब सूक्ष्म मतन में होता था। आप लोगों ने सैर की है सूक्ष्म वतन की? किस किस ने सैर की है? बहुत जो पुरानी बहने हैं वो सबने की है? नहीं करना चाहते हैं सूक्ष्म वतन की सैर करनी है? एक गीत भी बना है ना आजकल। अब कई कहते हैं मेरे पास बहुत लोग आते हैं, वो कैसे हो सकती है? तो ये बाबा ने एक बार कहा ना कि सब कुछ दे देता हूं परंतु साक्षात्कार की चाबी मैं अपने हाथ में रखता हूं। तो रेली जब बैठते हैं भोग लगाने तो एकदम खींच होती है, ऊपर ऊपर जा रहे हैं, बाबा से मुलाकात होती है, बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं। तो संतरी दादी ने बाबा को बताया कि हाँ बच्ची गई थी, फिर ये किया वो, हमें तो पता नहीं था कि वो इसलिए बैठी है, पर उन्होंने बताया। तो तीन तरह का साक्षात्कार होता है। एक होता है कि आपने देखा, जैसे हम शुरू में श्री कृष्ण को देखते थे, बस देखते थे, दृश्य देखते थे, पर कोई ना कोई बात होती थी ना कोई समझती, साक्षात्कार होता है। और दूसरा होता है कि बाबा ने जो कहा वो समझ में आया, क्योंकि बिना आवास के बाबा क्या कह रहे हैं वो समझ आने लग गया। और तीसरा होता है जब यहां से दादी ये हैं, बाबा है, आपको संदेश देते हैं, आप उसका उत्तर लेके आते हैं, बाबा ऐसे हैं, बाबा ये होना चाहिए, कि तो बाबा हमको डायरेक्शन देते हैं जो हम आके सुनाते हैं। बाबा ने काफी शिक्षाएं दी। एक तो सबसे बड़ी शिक्षा ये है कि अपनी बुद्धि को सदा इतना स्वच्छ रखो किसी बात का प्रभाव ना हो, क्योंकि जो प्रभाव होता है ना किसी बात का तो बुद्धि के अंदर उसका असर पड़ता है। तो तब से एक अटेंशन जरूर रखा है, कितना भी देखो, कम से कम मैं 55 कंट्रीज में गई हूं, कम से कम मैं समझती हूँ, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अलग कल्चर में गए, अलग स्थानों पर रहे, सब कुछ किया। अभी UN में रिप्रेजेंटेटिव है, बहुत कुछ सुनते हैं, समाचार सुनते हैं, कई चीजें ध्यान में रखनी भी पड़ती हैं, क्योंकि आपसे कोई कुछ पूछे आपको पता ही ना हो। तो मैंने इसलिए जब पढ़ाई की तो भी पॉलिटिकल साइंस इसलिए की कि थोड़ा पता रहे दुनिया कैसे चलती है, राजनीति क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, मतलब थोड़ी थोड़ी जैसे नॉलेज रहे। तो इतना सब होते हुए भी बुद्धि में किसी बात का असर ना हो। अभी अमेरिका के इलेक्शन हुए तो मैंने कई बाबा के बच्चे बात करते हैं, मैंने कहा कि देखो ड्रामानुसार जो होता है बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये होना चाहिए कि नहीं वो बुद्धि नहीं चलाते, इसको नहीं, इसको ये क्यों हार गया, ये क्यों जीत गया। बहुत बड़ी बात थी ना USA के इलेक्शन तो, क्योंकि उसका प्रभाव सारी दुनिया में है। तो बाबा ने जो कहा ना कि कोई भी बात बुद्धि में नहीं रखो, सोचो भी नहीं बुद्धि से, इंफॉर्मेशन हम सब रखते हैं परंतु इन्फ्लुएंस ना हो, बुद्धि चले नहीं, चाहे राजनीति में चाहे, तो हमने एम रखी सब कुछ जानते हुए सुनते हुए देखते हुए भी, क्योंकि नहीं तो बुद्धि में क्या होगा जब बाबा से बात करेंगे ना, तो वो थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है ये नहीं लगता है, मतलब बुद्धि तो फिर कई तरह से काम कर, और ये राय तो मैं सभी राजयोगी बाबा के बच्चों को कहती हूँ कि योग बुद्धि का है ना, अगर आप चाहे तो एकदम एक्यूरेट योग हो और महसूस हो कि ये योग अग्नि है या योग यात्रा है, तो यात्रा करनी है बुद्धि से, अग्नि है प्रज्वलित करनी है, विकर्म विनाश हो, तो अपनी बुद्धि को कभी भी, समय के साथ होता है कभी कभी ड्रामा की कई परिस्थिति हैं, कई सीन्स हैं ड्रामा के, ये ऐसा है ये ऐसा है ये हुआ वो हुआ, बुद्धि में उसका प्रभाव नहीं आने दो, आपकी निर्णय शक्ति आपकी योग की शक्ति बाबा से कम्युनिकेशन ये सब तब हो सकते हैं क्लियर, जब अपनी बुद्धि जो है वो एकदम स्वच्छ रहे, स्वच्छ पड़ता है। तो इसलिए सूक्ष्म मतन संगम युग पर बाबा ने एक ऐसा हमारे लिए वतन बनाया, स्थान बनाया है जहां हम बाबा को मिलें, बाबा से वार्तालाप करें, बाबा के सामने बैठें, तो पांच तत्वों से पार है, और उसके बाद फिर अपना मूल वतन। शुरू शुरू में बहुत देखा हमने कि सूक्ष्म वतन मूल वतन जा तो नहीं सकते ना, अगर घर एक बार गए तो वापस कैसे आएंगे ना, परंतु देखा जरूर है लाइट कैसी है, और वतन है फिर उसके बाद अपना घर है, तो बाबा की याद में रहकर भी अपने घर का अनुभव, क्योंकि जब हम घर में होंगे तो घर का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि मूल वतन में न मन काम करता है न बुद्धि करती है। सूक्ष्म वतन तक संकल्प शक्ति, तो एक बार बाबा ने कहा था कि सब कारोबार सूक्ष्म वतन का संकल्प शक्ति से चलते। दादी गुलजार उन्होंने बहुत मनसा की शक्ति जमा की हुई थी, वो सोचती बहुत कम थी, बहुत कम, जाएंगे दादी आपको ये बात ध्यान पर है, आपको इस बात का ख्याल तो नहीं हो रहा, अरे मेरा बाबा नहीं करता मैं क्यों करूं, तो उनकी वो शक्ति जमा थी, तो आज अव्यक्त बाप दादा का कितना पार्ट चला ना, क्योंकि ये शक्ति है ना संकल्प की बुद्धि की, तो ये दोनों मूल वतन में मर्ज होती हैं, और वो दोनों जब साकार में आते हैं दुनिया में, जब प्रकृति का आधार लेते हैं, तो संकल्प भी चलता है बुद्धि भी चलती है, इसका मतलब एक निर्संकल्प स्थिति। देखो एक साइलेंस होती है एक निर्संकल्प होते हैं, साइलेंस में हम बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, मूल वतन की साइलेंस, और एक है कि हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पर विचार नहीं चलता ज्यादा। कई बहुत सोचते हैं, कोई कम सोचते हैं, और कोई तो जब जरूरत है, जितना जरूरी है उतना ही सोचते हैं। कोई तो सोचते रहते हैं, सोचते हैं। ज्यादा सोचने का भी एक बहुत बड़ा काम है। क्यों सोचे हम, क्या जरूरी है ये सोचना? तो ये जो निर्संकल्प स्थिति होती है, ये दो तीन दिन पहले बाबा ने कहा, ऐसे तो शिवालय बहुत नजदीक है, पर किसी को नजदीक लगता है, किसको दूर लगता है। ऐसे ही सूक्ष्म वतन, फिर मूल वतन। मूल वतन का भी जो अनुभव है, घर का, जो मैंने कहा ना, घर के अंदर सब कुछ मर्ज है मन बुद्धि आत्मा में, ये नहीं कि नहीं है, लेकिन मन बुद्धि एक्टिव होती है तब जब प्रकृति के कनेक्शन है। जैसे ही आत्मा गर्भ में आती है तो चल मूवमेंट चलती है। कई ऐसी बहनें माताएं हैं, उनसे अनुभव पूछते हैं तो कहती है, मुझे पता चलता है, पता चल रहा था तब कि अभी आत्मा आई है, तो शरीर में जो दूसरा छोटा शरीर है वो हिलने लगता है। थोड़ा सूक्ष्म है। बाबा इसका अच्छा उदाहरण देते थे, कोई टाइम ऐसा होता था जो ये टेप रिकॉर्डर ये सब नहीं थे, एक बहुत बड़ा, उसको ग्रामाफोन कहते थे भाई, इतने बड़े रिकॉर्ड होते थे, उसको आप रखिए, उस पे रखिए, उसके ऊपर एक नीडल रखते थे तो गीत बजने लगते हैं, या जो कुछ भरा हुआ। ये ब्रह्मा बाबा उदाहरण देते थे, जैसे ही रखेंगे ना रिकॉर्ड चलने लगते हैं, क्या भरा हुआ है वो सुनाई पड़ता है। ऐसे ही आत्मा भी जैसे नीचे आती है, टच करती है, यानी प्रकृति के कांटेक्ट में आती है, उस पर समय संस्कार जो आत्मा में भरे हुए हैं वो पार्ट है अपना, वो शुरू हो जाता है। कल कोई कह रहा था कि एक कन्या आई थी, आज या कल, कि ये बच्ची ने सारा ज्ञान गर्भ में सुना है, जैसे वीर अभिमन्यु की कहानी सुना था, क्योंकि जैसे ही वो लोग ज्ञान में आए, या कभी तो उससे थोड़ा पहले, तो बहन बता रही थी कि ये आत्मा आ गई पहले ज्ञान से, तो इसने पूरा ज्ञान गर्भ में सुना है, मतलब मुरली भी सुनी है उसने, सब कुछ सुना है, क्योंकि सुन सकती है ना आत्मा, तब मूल वतन में नहीं सुन सकती। तो अब सूक्ष्म वतन का पार्ट सिर्फ संगम युग पर है। नहीं, कई बार मुरली में बाबा कहते हैं, आजकल कम आता है, कि जब आप लोग यहां से मूल वतन जाते हो तो सूक्ष्म वतन से होते जाते हो, वहां पर आपका सारा कस्टम क्लियरेंस का हो। सूक्ष्म वतन में जो भी आपका कुछ भी रहा हुआ हिसाब किताब है या सब चुकतू करके, वहां से आपको क्लियरेंस मिलती है, तो आप वतन में जाते, मूल वतन जाते। तो अभी तक, अभी ऐसे बहुत नई ट्रांस में जाते हैं, शुरू शुरू में तो बहुत जाते थे, थोड़े से बहुत थोड़े भाई होते थे, जगदीश भाई वगैरह, जिनको ध्यान में मतलब नशे में चले जाते थे। धीरे धीरे वो पार्ट कम होता गया, उसके कई कारण थे। एक तो बाबा जो कहता है ना कि ध्यान में माया भी आ जाती है, मतलब एक सूक्ष्म इच्छाएं होती हैं। जैसे मैं जब ज्ञान में आई तो और भी कन्याएं थी, तो उनको बहुत होता था हम क्यों नहीं जा सकते, तो बहुत ही जोर लगा था भाई अभी मुझे जाना है, वतन में जाना है। तो बड़ा फोर्स से, जैसे वो नेचुरल भी नहीं लगता था और संदेश भी जब सुनते थे तो थोड़ा डिफरेंट लगता था। तो बाबा ने कहा धीरे धीरे अभी, बाबा के समय दो चीजें होती थी, गो सुन कम सुन भोग लगाना है या फिर कुछ दृश्य दिखाएं। आपको याद है जब पाकिस्तान में थे ये लोग, तपस्या 14 साल की थी, तो बाबा साक्षात्कार कराते थे कि सतयुग में ऐसे दरबार लगेगी, ऐसे कपड़े होंगे, तो कुछ इतना तो करना नहीं होता था, तो वो सीन बनाते थे, कपड़े सिलते थे, बहनें पहनती थी, देवी देवताओं की दरबार लगी, उनका भोजन कैसे होता था, ऐसे ऐसे दृश्य देखते थे। क्योंकि बाबा को सबको बिजी भी रखना था और कुछ शाम को रोज यही होता था, संदेशी दृश्य देख के आई, वो दृश्य यहाँ पर प्रैक्टिकल में करते। एक तरह से बाबा सबको बहला के रखता था, एंटरटेनमेंट को, खुशी को। अब प्रश्न ये है कि एक होता है ध्यान में जाना, एक होता है वतन का अनुभव करना, वो सब कर सकते हैं। एक अभ्यास जरूर चाहिए कि आपकी बुद्धि देह से, देह के 5 तत्वों से ऊपर एकदम आत्मिक स्थिति में, स्थूल स्थूल से पार सूक्ष्म, तो हमारी अगर जो स्थिति है वो सूक्ष्म है, ये बहुत बड़ा अभ्यास है कि हमारी स्थिति सूक्ष्म हो। कई लोगों का देह अभिमान अलग अलग तरीके से होता है। ये जो बाबा स्वभाव की बात करता है, नेचर है, कोई बहुत सेंसिटिव होते हैं, थोड़ा ही कुछ होता है उनको कैसे क्या मतलब देह बना जाता है, तो जो उनका स्वभाव है वो शांत रहे, प्रेम स्वरूप रहे, बहुत नहीं सोचे, तो जैसे जैसे सूक्ष्म देही अभिमानी बनते हैं वैसे अपना जो निजी स्वभाव है, जो अनादि स्वभाव है आत्मा का, वो इमर्ज रहता है। राजू भाई बता रहे थे कि अगर आत्मा के 7 निजी गुण हैं, अनादि गुण हैं, रोज एक एक गुण का मनन करो तो वो स्थिति बन जाएंगे, जिसको आजकल बाबा स्वरूप कहते हैं, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, वो सागर है, हम स्वरूप हैं। जब स्वरूप होते हैं तो सागर से कनेक्शन बहुत सहज है, लेकिन अशांत स्वरूप है जल्दी जल्दी अशांत हो जाते हैं, उस शांति के सागर से कैसे बुद्धि लगेगी? अपनी मेहनत है अपने अनादि आदि स्वरूप को बनाए रखना। तो सूक्ष्म, जैसे कि आत्मिक स्थिति है सूक्ष्म, और जो देवभान है उसमें बहुत सेंसिटिव होते हैं। अच्छी एनर्जी है सेंसिटिव होना, पर एक देह अभिमान का सेंसिटिव नेचर, एक देही अभिमानी का सेंस, जिसमें हम बाबा की बात को समझ लें, वो भी सेंसिटिव है ना, कैच करते हैं ना। ये जो कैचिंग पावर कहते हैं, तो जितना जितना सूक्ष्म कोशिश करो, बुद्धि भटके नहीं। दादी जानकी चार बातें कहती थी, अटके भी नहीं, झटके भी नहीं, चिपके भी नहीं, भटके भी नहीं, ऐसी बुद्धि रखो। तो उपराम रहेंगे, साक्षी रहेंगे, देखो, उपराम होके देखो ना, देखने की मना नहीं, पर लिप्त होकर के देखेंगे तो बहुत संकल्प चलेंगे, रिएक्शन होगा। तो ऐसे सूक्ष्म स्थिति बनाना, आजकल हम कहते हैं फरिश्ता, जिसका फर्श से कोई रिश्ता नहीं है, रहते हैं इस दुनिया में, पाठ बजा रहे हैं, कर्म क्षेत्र है, परंतु उपराम रहो। देखो कई लोग आदत होती है, ड्रामा देख रहे होंगे ना, या कई बार कुछ हो रहा है, देख रहे हैं और अपनी कमेंट्री कर रहे हैं, इस ये नहीं होना चाहिए था, अभी ये होगा। तो मैं उनको कहती हूँ, भाई देखो ना, आप बोल क्यों रहे हो? तो जैसे कि एक स्थूल है, पर सूक्ष्म क्या है हम देख रहे हैं, कई बार कई लोग कहते हैं, अरे आपने ये देखा? मैंने कहा मैंने तो नहीं देखा। ये भाई ये बहन आई थी, आपने देखा? ये उसका पर्स देखा आपने? ये कपड़े देखे आपने? नहीं। देखते हुए भी कितनी चीजें देखते ही नहीं है, क्या जरूरत है इतना अपने अंदर भरो? कई बातें इतना सोच लेते हैं वो अंदर चला जाता है। तो एक निर्संकल्प शांत स्वभाव, एक एकाग्रता, एक स्थिति, उससे आप की बुद्धि सूक्ष्म रहती है, एक सेकंड भी नहीं लगता है यहां से सूक्ष्म वतन में बुद्धि को कनेक्ट करना या बाबा से मिलन बनाना। ये देखो सूक्ष्म पुरुषार्थ है, गहरा पुरुषार्थ है। हम लोग कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ, मैं कहती हूं तीव्र क्या है? तेज तो नहीं भागेंगे ना, तीव्र क्या? सूक्ष्म है, धीरे धीरे अपना पुरुषार्थ की जो क्वालिटी है वो देखना है कि अभी मेरा स्वभाव, संस्कार, उपराम, तो आपकी सूक्ष्म स्थिति हो। तो सूक्ष्म स्थिति से सूक्ष्म वतन का अनुभव हो सकता है। हम लोग बाबा जब अव्यक्त बाप दादा आते थे तो सामने बैठते हैं, तो बाबा जब दादी गुलजार को तैयार कर रहे होते हैं तो मैं ऐसे बैठती थी, ध्यान में नहीं जाती थी, ऐसे बैठ के मुझे पता लगता था आज बाबा ये कहेंगे, क्योंकि बुद्धि सूक्ष्म है। देखो हमारी उस समय 5 मुख्य दादियां थी, चंद्रमणि दादी भी थी और भी यहां पर मधुबन में। अभी देखो डायरेक्शन देने वाला एक है और डायरेक्शन लेने वाले 5 हैं या ज्यादा हैं, और बाबा की श्रीमत क्या है किसी बात के बारे में आप 5 से पूछेंगे ना, कुछ सिमिलर सी लगती है, मतलब एक की डायरेक्शन है ना। तो अपनी बुद्धि को ऐसा रखेंगे कि हमको भी, बाबा बहुत कहता था टचिंग पावर कैचिंग पावर, एकदम समय पर ये ऐसा है ये मतलब कैच कर सकते। तो मैं तो सबको यही कहूंगी कि पुरुषार्थ को सूक्ष्म करके, अपनी स्थिति को सूक्ष्म करके आप सूक्ष्म वतन का न केवल अनुभव करिए, परंतु अव्यक्त बाप दादा भी हैं वहां पर, तो आपको महसूस हो कि बाबा कैसे डायरेक्शन दे रहे हैं, पालना कर रहे हैं, सूक्ष्म शक्ति हमें भर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे, हो भी रहे होंगे और ज्यादा होंगे। ऐसे तो जब सुनाते हैं इस तरह की बातें, तो उस समय जो जो बाबा ने कई तरह की दृश्य हुए, यहां भी वहां भी देखते हैं, परंतु समय को देखते हुए अपनी स्थिति और वतन, जैसे अभी हम थोड़ी ड्रिल करते हैं, देखो आप कितनी देर लगती है आपको वतन तक में। ट्रैफिक कंट्रोल के बाद अपने तो दो ही ठीक। दस मिनट थोड़ा टाइम लेंगे, लाइट रेडी कर दिए तो मैं आत्मा ब्रिकुटि के बीच में ज्योति स्वरूप शांति स्वरूप इन पांच तत्वों से पार इन पांच तत्वों से पार चांद सूर्य सितारों से भी पार धीरे धीरे बाबा हम सभी बच्चों को वतन में आह्वान करते हैं वतन में बाबा हम बच्चों से दृष्टि द्वारा मिलन मनाते हैं और बाबा दृष्टि के द्वारा मुझ आत्मा को पहले पहले तो भरपूर करते हैं आत्मा के जो सूक्ष्म संकल्प है उन संकल्पों को पूरा भी करते हैं जैसे जब हम सभी भोग लगाते हैं चाहे रोज का भोग है चाहे गुरुवार का भोग है बाबा जब भोग स्वीकार करते हैं तो उसी समय बाबा उनके निमित्त जो भी शक्ति परिवर्तन वो सब दृष्टि के द्वारा करते हैं इस तरह से अपने को बाबा से दृष्टि लेते रहे, बाबा के सामने अपनी इच्छा संकल्प कहने की जरूरत नहीं है। हमारे माता पिता हैं, हर बच्चे की हर आवश्यकता को हर प्रकार से बाबा तक पहुंचती है। तो वतन में हर फिकर से पार एक बहुत सुंदर सूक्ष्म मिलन हम सभी करते हैं। कल जब अव्यक्त बाप दादा का हवन करेंगे, बाबा की मुरली सुनेंगे, तो ऐसी स्थिति रखिए जैसे वतन में बाबा के सामने है। आप सभी को बहुत सुंदर बहुत विशेष अनुभव होते रहेंगे। अब हम अपने कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करते हैं और कर्म करते हुए भी जितना साइलेंस में रहें, भोजन करें साइलेंस में रहें, तो आपकी सूक्ष्म स्थिति बढ़ती जाएगी। आप में से बहुत भाई बहनों को पहली बार देखा है, पर मुलाकात हो रही है। कर्नाटका जोन सभी आए हैं अलग अलग स्थानों से। सबसे तो वन टू वन नहीं मिल सकते क्योंकि काफी तो मिले हैं, पर कईयों से सबसे अभी मिल रहे हैं। हम लोग 2 महीने यहाँ रहते हैं, अक्टूबर नवंबर, फिर फरवरी मार्च अप्रैल तक 2.5 महीने जो भी आते हैं उनसे मिलना होता है। पर बहुत खुशी हुई आप लोग जिस तरह से धैर्यता से प्रेम से और जिज्ञासा से ये अनुभव सुन रहे हैं, बहुत बहुत थैंक्स आपको और बहुत खुशी।
ओम शांति। योगेश्वर बाबा की प्यारी प्यारी महायोगी महातपस्विनी दीदी जी, हमें अभी बहुत अच्छा सूक्ष्मतन का सैर कराया, अनुभव भी कराया, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी राज भी खुला दिया। दीदी को हम सभी से हम सब से कोटि कोटि धन्यवाद है, अभिनंदन है, अभिवादन है।